ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वृत्र गीता। महाबली वृत्तासुर को जब देवताओं द्वारा पराजित होकर भी कोई शोक संतप्त नहीं हुआ, तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके पूछने पर वृत्रासुर ने बहुत ज्ञानयुक्त वचन कहे, परंतु साथ ही वृत्तासुर ने भगवान विष्णु के प्रभाव, मनुष्यों द्वारा जीवन धारण के हेतु कर्मों में प्रवृत्ति का कारण, कर्मफल तथा सनातन पद की प्राप्ति का उपाय आदि के विषय में जिज्ञासा व्यक्त की, जिसका समाधान वहां उपस्थित हुए भगवान सन्नत कुमार जी ने उत्तम रीति से किया, जो सभी कल्याणकामी साधकों के लिए लाभप्रद है। यह वृत्तासुर शुक्राचार्य का संवाद तथा सन्नत कुमार जी द्वारा उनको दिए गए उपदेश मिलकर वृत्र गीता नाम से ख्यात हुए, जो महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत भीष्म युधिष्ठिर संवाद का ही अंग है। यह वृत्र गीता यहाँ सानुवाद प्रस्तुत की जा रही है। पहला अध्याय, ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय तथा उस विषय में वृत्र शुक्र संवाद का आरंभ। युधिष्ठिर उवाच, धन्या धन्या इति जनाः सर्वे अस्मान् प्रवदन्त्युत न दुखी ततरह कश्चित पुमानस्माभिरस्तिह। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, सभी लोग हम लोगों को धन्य धन्य कहते हैं, परंतु हम लोगों से बढ़कर अत्यंत दुखी दूसरा कोई मनुष्य नहीं है। लोक संभावितैः दुःखं यत प्राप्तं कुरु सत्तम प्राप्य जातिं मनुष्येषु देवैरपि पितामह। कुरु श्रेष्ठ पितामह, देवताओं द्वारा मानव लोक में जन्म पाकर तथा सब लोगों द्वारा सम्मानित होकर भी हमें यहाँ महान दुख प्राप्त हुआ है। कदा वयम करिष्यामः संन्यासं दुख संज्ञकं दुःखं मेतत् शरीराणां धारणं कुरु सत्तम। कुरु श्रेष्ठ, संसारी मनुष्य जिसे दुख कहते हैं, उस संन्यास का अवलंबन हम लोग कब करेंगे? हमें तो इन शरीरों का धारण करना ही दुख जान पड़ता है। विमुक्ताः सप्तदशभिर् हेतु भूतैश्च पञ्चभिः इन्द्रियार्थैः गुणैश्चैव अष्टाभिश्च पितामह न गच्छन्ति पुनर्भावं मुनयः संशित व्रताः कदा वयं गमिष्यामो राज्यं हित्वा परंतप। पितामह, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व, काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न, ये संसार के 5 हेतु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय, सत्व, रज और तम, ये 3 गुण तथा 5 भूतों सहित अविद्या, अहंकार और कर्म, ये 8 तत्वों के समुदाय सब मिलाकर 38 तत्व होते हैं। इन सबसे मुक्त हुए तीक्ष्ण व्रतधारी मुनि पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। परंतु पितामह, हम लोग भी कब अपना राज्य छोड़कर इसी स्थिति को प्राप्त होंगे? भीष्म उवाच, नास्त्यंतम महाराज सर्वं संख्यान गोचरः पुनर्भावो अपि विख्यातो नास्ति किंचित देहालचलम। भीष्म जी ने कहा, महाराज, दुख अनंत नहीं है, जगत की सभी वस्तुएं संख्या की सीमा में ही हैं, असंख्य नहीं है, पुनर्जन्म भी नश्वरता के लिए विख्यात ही है। तात्पर्य यह है कि इस जगत में कोई भी वस्तु अचल या स्थायी नहीं है। न चापि मन्यसे राजन नेश दोषः प्रसंगतः उद्योगादेव धर्मज्ञः काले नैव गमिष्यतः। तुम जो ऐसा मानते हो कि ऐश्वर्य दोष कारक होता है, क्योंकि वह आसक्ति का हेतु होने के कारण मोक्ष का प्रतिबंधक है, तो तुम्हारी यह मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि तुम सब लोग धर्म के ज्ञाता हो, स्वयं ही उद्योग करके शम दम आदि साधनों द्वारा कुछ ही काल में मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। नेशे अयम सततम देही नृपते पुण्य पापयोः तत एव समुत्थेन तमसा रुध्यते अपि च। नरेश्वर, यह जीवात्मा पुण्य और पाप के फल सुख और दुख भोगने में स्वतंत्र नहीं है, उन पुण्य और पापों से उत्पन्न संस्कार रूप अंधकार से यह आच्छन्न हो जाता है। यथा अंजनमयो वायुः पुनर्मान शिलम रजः अनुप्रविश्य तद्वर्णो दृश्यते रंजयन दिशः तथा कर्मफलर्देही रंजितस्तम सावृतः विवर्णो वर्णमाश्रित्य देहेषु परिवर्तते। जैसे अंधकारमय वायु मैन सिल के लाल पीले चूर्ण में प्रवेश करके उसी के रंग से युक्त हो संपूर्ण दिशाओं को रंगती दिखाई देती है, उसी प्रकार स्वभावतः वर्ण विहीन यह जीवात्मा तमोमय अज्ञान से आवृत और कर्म फल से रंजित हो वही वर्ण ग्रहण कर अर्थात विभिन्न शरीरों के धर्मों को स्वीकार करके समस्त प्राणियों के शरीर में घूमता रहता है। ज्ञानेन ही यदा जंतुरज्ञान प्रभवम तमः व्यपोहति तदा ब्रह्म प्रकाशति सनातनम्। जब जीव तत्व ज्ञान द्वारा अज्ञान जनित अंधकार को दूर कर देता है तब उसके हृदय में सनातन ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है। अयत्न साध्यम मुनयो वदन्ति ये चापि मुक्तास्त उपासितव्याः त्वया च लोकेन च सामरेण तस्मान् नमस्यामि महर्षि संघान। ऋषि मुनि कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति किसी क्रियात्मक यत्न से साध्य नहीं है, इसके लिए तो देवताओं सहित संपूर्ण जगत को और तुमको उन पुरुषों की उपासना करनी चाहिए जो जीवन मुक्त हैं। अतएव मैं महर्षियों के समुदाय को नमस्कार करता हूँ। अस्मिन्नर्थे पुरा गीतम शुणुष्वयि कमना नृप यथा दैत्येन वृत्रेण भ्रष्टैश्वर्येण चेष्टितम निर्जितेना सहायेन हृतराज्येन भारत अशोचता शत्रु मध्ये बुद्धिमास्थाय केवलाम। नरेश्वर, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, उसे एक चित्त होकर सुनो। भरत नंदन, पूर्व काल में वृत्रासुर पराजित और ऐश्वर्य भ्रष्ट हो गया था। उसका कोई सहायक नहीं रह गया था, देवताओं ने उसका राज्य छीन लिया था। उस दशा में पढ़कर भी उस असुर ने जैसी चेष्टा की थी उसी का इस कथा में वर्णन है। वह शत्रुओं के बीच में रहकर भी आसक्ति शून्य बुद्धि का आश्रय ले शोक नहीं करता था। भ्रष्टैश्वर्यं पुरा वृत्र मुनषा मुषणा वाक्यम ब्रवीत काचित पराजित स्याद न व्यथा ते अस्ति दानव। पूर्व काल की बात है कि वृत्रासुर को ऐश्वर्य भ्रष्ट हुआ देख शुक्राचार्य ने उससे पूछा, दानवराज तुम्हें देवताओं ने पराजित कर दिया है तो भी आजकल तुम्हारे चित्त में किसी प्रकार की व्यथा नहीं है, इसका क्या कारण है? वृत्र उवाच, सत्येन तपसा चैव विदित्वान संशयम ह्यहम न शोचामि न हर्ष्यामि भूतानामा गतिम गतिम। वृत्रासुर ने कहा, ब्राह्मण मैंने सत्य और तप के प्रभाव से जीवों के आवागमन का रहस्य निश्चित रूप से जान लिया है, इसलिए मैं उसके विषय में हर्ष और शोक नहीं करता हूँ। काल संचोदिता जीवा मज्जनंती नरके अवशाह परिस्तुष्टानि सर्वाणी दिव्यान्याहुर मनीषिण। काल से प्रेरित हुए जीव अपने पाप कर्मों के फल स्वरूप विवश होकर नरक में डूबते हैं और पुण्य के फल से वे सब के सब स्वर्ग लोक में जाकर वहां आनंद भोगते हैं, ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। क्षपयित्वा तु तम कालम गणितम कालचोदिता सावशेषेण काले न संभवन्ति पुनः पुनः। इस प्रकार स्वर्ग अथवा नरक में कर्म फल भोग द्वारा निश्चित समय व्यतीत करके भोगने से बचे हुए कर्म सहित काल की प्रेरणा से वे बारंबार इस संसार में जन्म लेते रहते हैं। तिर्यग योनि सहस्राणी गत्वा नरकमेव च निर्गच्छन्त्य वशा जीवाः काम बंधन बंधनाः। कामनाओं के बंधन में बंधकर विवश हुए कितने ही जीव सहस्रों बार तिर्यग योनि तथा नरक में पड़कर पुनः वहां से निकलते हैं। एवं संसर्माणानि जीवान्य हम दृष्टवान यथा कर्म तथा लाभ इति शास्त्र निदर्शनम। इस प्रकार मैंने सभी जीवों को जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ देखा है। शास्त्र का भी ऐसा सिद्धांत है कि जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। तिर्यग गच्छन्ति नरकं मानुष्यं देवमेव च सुख दुखे प्रिये द्वेष्ये चरित्वा पूर्वमेव। प्राणी पहले ही सुख दुख तथा प्रिय और अप्रिय विषयों में विचरण करके कर्म के अनुसार नरक, तिर्यग योनि, मनुष्य योनि अथवा देव योनि में जाते हैं। कृतांत विधि संयुक्तः सर्वो लोकः प्रपद्यते गतम गच्छन्ति चाध्वानं सर्वभूतानि सर्वदा। समस्त जीव जगत विधाता के विधान से ही परिचालित हो सुख दुख पाता है और समस्त प्राणी सदा चले हुए मार्ग पर ही चलते हैं। काल संख्यान संख्यातम सृष्टि स्थिति परायणम तम भाषमाणम भगवानुषाना प्रत्यभाषत धीमान दुष्ट प्रलापांस्त्वं तात कस्मात् प्रभाषसे। जो काल नाम से प्रसिद्ध और सृष्टि और पालन के परम आश्रय हैं उन परमात्मा का प्रतिपादन करते हुए वृत्रासुर की बात सुनकर भगवान शुक्राचार्य ने उससे कहा, तात तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, फिर ये असुर भाव के विपरीत दोषयुक्त निरर्थक वचन कैसे कह रहे हो। वृत्र उवाच, प्रत्यक्षमेतद् भवस्तस्तथान्येषां मनीषिणां मया यज्जय लुब्धेन पुरा तप्तम महत तपः। वृत्रासुर ने कहा, ब्रह्मन् आपने तथा दूसरे मनीषी महानुभावों ने यह तो प्रत्यक्ष देखा है कि मैंने पहले विजय के लोभ से बड़ी भारी तपस्या की थी। गंधानादाय भूतानां रसांश्च विविधानपि अवर्धम त्रीन समाक्रम्य लोकान वै स्वेन तेजसा। मैं बल में बहुत बड़ा चढ़ा था, अतः मैंने अपने ही तेज से तीनों लोकों पर आक्रमण करके दूसरे प्राणियों को धूल में मिलाकर उनके उपभोग की गंध और रस आदि विविध वस्तुएं छीन ली थीं। ज्वाला माला परिक्षिप्तो वैहाय सचरस तथा अजेय सर्वभूतानामांस नित्यमप्येतभिः। मेरे शरीर से आग की लपटें निकलती थीं और मैं ज्वाला मालाओं से घिरकर सदा आकाश में निर्भय विचरता हुआ समस्त प्राणियों के लिए अजेय हो गया था। ऐश्वर्यम तपसा प्राप्तम भ्रष्टम तच्च स्वकर्मभिः धृतिमास्थाय भगवन् न शोचामि ततस्त्वहम्। भगवन् इस प्रकार मैंने तपस्या के प्रभाव से जो ऐश्वर्य प्राप्त किया था वह मेरे अपने ही कर्मों से नष्ट हो गया, तथापि मैं धैर्य धारण करके उसके लिए शोक नहीं करता हूँ। युजुत्सुना महेंद्रेण पुंसा सार्धम महात्मना ततो मे भगवान दृष्टो हरिर नारायण प्रभु। महामनस्वी पुरुष प्रवर देवराज इंद्र जब युद्ध की इच्छा से मेरे सामने आए उस समय उनके साथ उन्हीं की सहायता के लिए आए हुए सबके प्रभु भगवान श्री नारायण हरि का मैंने दर्शन किया था। वैकुंठ पुरुषो अनंत शुक्लो विष्णु सनातन मुंजकेशो हरिश्मश्रु सर्वभूत पितामह। वे भगवान वैकुंठ पुरुष अनंत शुक्ल विष्णु सनातन मुंजकेश हरिश्मश्रु तथा संपूर्ण भूतों के पितामह हैं। नूनम तु तस्य तपसः सावशेष मिहास्ति वै यदहं प्रष्टुमिच्छामि भगवन् कर्मणः फलम्। भगवन् अवश्य ही मेरी उस तपस्या का कोई अंश अब भी शेष रह गया है, अतः मैं उस कर्म फल के विषय में प्रश्न करना चाहता हूँ। ऐश्वर्यं वै महद् ब्रह्म वर्णे कस्मिन् प्रतिष्ठितं निवर्तते चापि पुनः कथम ऐश्वर्यमुत्तमम्। अणिमा आदि ऐश्वर्य और महद ब्रह्म किस वर्ण में प्रतिष्ठित हैं तथा वह उत्तम ऐश्वर्य कैसे नष्ट हो जाता है। कस्माद् भूतानि जीवन्ति प्रवर्तन्ते तथा पुनः किंबा फलम परम प्राप्य जीवस्तिष्ठति शाश्वतः। प्राणी किस हेतु से जीवन धारण करते हैं तथा किस कारण से कर्म में प्रवृत्त होते हैं। जीव किस परम फल को पाकर अविनाशी एवं सनातन रूप से प्रतिष्ठित होता है। केन वा कर्मणा शक्यमथ ज्ञानेन केन वा तद्वाप्तुम फलम विप्र तन्मे व्याख्यातु मर्हसि। विप्रवर, किस कर्म अथवा ज्ञान से उस फल को प्राप्त किया जा सकता है यह मुझे बताने की कृपा करें। इदित मुक्तम सह मुनिस्तदानीम प्रत्याह यत तच्छृणु राजसिंह मयोच्यमानं पुरुषर्षभ त्वमनन्य चित्तः सह सोदरीयैः। राजसिंह, पुरुष प्रवर युधिष्ठिर, उसके ऐसा प्रश्न करने पर मुनिवर शुक्राचार्य ने उस समय उसे जो उत्तर दिया उसे मैं बता रहा हूँ। तुम अपने भाइयों के साथ एकाग्र चित्त होकर सुनो। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्ष धर्म पर्वणि वृत्र गीता सुप्रथमो अध्यायः। दूसरा अध्याय, वृत्रासुर को सन्नत कुमार का आध्यात्म विषयक उपदेश देना और उसकी परम गति तथा भीष्म द्वारा युधिष्ठिर की शंका का निवारण। उशनो उवाच, नमस्तस्मै भगवते देवाय प्रभ विष्णवे यस्य पृथ्वी तलम तात साकाशम बाहुगोचरः। शुक्राचार्य ने कहा, तात, आकाश सहित यह सारी पृथ्वी जिनकी भुजाओं के बल पर स्थित है, महान प्रभावशाली उन भगवान विष्णु देव को नमस्कार है। मूर्धा यस्य त्वनंतम च स्थानम दानव सत्तम तस्याहम ते प्रवक्ष्यामि विष्णोर महात्म्यमुत्तमम्। दानव श्रेष्ठ, जिनका मस्तक और स्थान भी अनंत हैं, उन भगवान विष्णु का उत्तम महात्म्य मैं तुम्हें बताऊंगा। तयोः संबद तोरेव माजगाम महामुनिः सन्नत कुमारो धर्मात्मा संशय छेदनाय वही। शुक्राचार्य और वृत्तासुर में ये बातें हो ही रही थीं कि वहाँ महामुनि धर्मात्मा सन्नत कुमार उनके संशय का निवारण करने के लिए आ पहुँचे। सपूजितो असुरेन्द्रेण मुनि नोशनसा तथा निशा सादासने राजन महारहे मुनि पुंगव। राजन, असुर राज वृत्र और मुनि शुक्राचार्य के द्वारा पूजित हो मुनिवर सन्नत कुमार एक बहुमूल्य सिंहासन पर विराजमान हुए। तमासीनम महाप्रज्ञ मुशना वाक्यम ब्रवीत ब्रूयस्मय दानवेन्द्राय विष्णुर महात्म्यमुत्तमम्। जब महाज्ञानी सन्नत कुमार आराम से बैठ गए तब शुक्राचार्य ने उनसे कहा, भगवन, आप इस दानवराज को भगवान विष्णु का उत्तम महात्म्य बतनाइए। सन्नत कुमारस्तु ततः श्रुत्वा प्राह वचो अर्थवत् विष्णोर महात्म संयुक्तम दानवेन्द्राय धीमते। यह सुनकर सन्नत कुमार जी ने बुद्धिमान दानवराज वृत्रासुर के प्रति भगवान विष्णु की महिमा से युक्त यह सार्थक वचन कहा। शृणु सर्वमिदं दैत्य विष्णोर महात्म्यमुत्तमं विष्णु जगत स्थितं सर्वमिति विद्धि परंतप। शत्रुओं को संताप देने वाले दैत्य, भगवान विष्णु का यह संपूर्ण उत्तम महात्म्य सुनो। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि यह समस्त संसार भगवान विष्णु में ही स्थित है। सृजत्येष महाबाहो भूतग्रामं चराचरम एष चाक्षिपते काले काले विसृजते पुनः। पर महाबाहो, ये श्री विष्णु ही संपूर्ण चराचर प्राणी समुदाय की सृष्टि करते हैं और ये ही समय आने पर उसका विनाश करते हैं एवं समय आने पर पुनः सृष्टि भी करते हैं। अस्मिन् गच्छन्ति विलयमस्माच्च प्रभन्त्युत नैष ज्ञानवता शक्यस्तपसा नैव चेज्यया संप्राप्तुमिन्द्रियाणां तु संयमे नैव शक्यते। समस्त प्राणी इन्हीं के लय को प्राप्त होते हैं और इन्हीं से प्रकट भी होते हैं। इन्हें कोई शास्त्र ज्ञान, तपस्या और यज्ञ के द्वारा भी नहीं पा सकता। केवल इंद्रियों के संयम से ही उनकी उपलब्धि हो सकती है। बाह्य चाभ्यंतरे चैव कर्मणोर मनसि स्थितः निर्मली कुरुते बुद्धया सो अमुत्रानंत्यमश्नुते। जो बाह्य यज्ञ आदि और आभ्यंतर शम दम आदि कर्मों में प्रवृत्त होकर मन के विषय में स्थिरता प्राप्त करके अर्थात मन को स्थिर करके बुद्धि के द्वारा उसे निर्बल बनाता है, वह परलोक में अक्षय सुख यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यथा हिरण्यकर्ता वैरूप्यमग्नो विशोधयेत् बहुशो अतिप्रयत्नेन महतात्मकृतेन तद्वज्जातिशतैर्जीवः शुद्धयते अनेन कर्मणा यत्नेन महता चैवाप्येक जातो विशुद्धयते। जैसे सुनार बारंबार किए हुए अपने महान प्रयत्न के द्वारा चांदी को आग में डालकर उसे शुद्ध करता है, उसी प्रकार जीव सैकड़ों जन्मों में अपने मन को शुद्ध कर पाता है, परंतु इस यज्ञ आदि और शम दम आदि कर्मों द्वारा यदि वह महान प्रयत्न करे तो एक ही जन्म में शुद्ध हो जाता है। लीलयाल्पम यथा गात्रात् प्रमृज्यादात्मनो रजः बहुयत्नेन महता दोष निर्हणनम तथा। जैसे अपने शरीर में लगी हुई थोड़ी सी धूल को मनुष्य साधारण चेष्टा से खेल ही खेल में झाड़ पहुँच देता है, उसी प्रकार बारंबार किए हुए महान प्रयत्न से वह अपने राग द्वेष आदि दोषों को भी दूर कर सकता है। यथा चाल्पेन माल्येन वास्यतम तिलसर्षपम न मुंचति स्वकम गंधम तद्वत सूक्ष्मस्य दर्शनम। जैसे थोड़े से पुष्प एवं माला द्वारा वासित किया हुआ तिल और सरसों का तेल अपनी गंध नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार थोड़े से प्रयत्न से न तो दोष दूर होते हैं न सूक्ष्म ब्रह्म का साक्षात्कार ही हो पाता है। तदेव बहुभिर माल्यैर वास्यमानं पुनः पुनः विमुञ्चति स्वकं गंधं माल्यगंधे च तिष्ठति एवं जाति शतै युक्तो गुणैरेव प्रसंगिषु बुद्धया निवर्तते दोषो यत्ने नाभ्या सजेनः। वही तिल या सरसों का तेल बहुत से सुगंधित पुष्प द्वारा बारंबार वासित होने पर अपनी गंध को छोड़ देता है और उस फूल की गंध में ही स्थित हो जाता है, उसी प्रकार सैकड़ों जन्मों में स्त्री पुत्र आदि के संसर्ग से युक्त तथा सत्व रज और तम इन तीनों गुणों द्वारा प्रवर्तित दोष समूह बुद्धि तथा अभ्यास जनित यत्न से निवृत्त हो पाता है। कर्मणा स्वनुरुक्तानि विरक्तानि च दानव यथा कर्म विशेषांश प्राप्नुवन्ति तथा शृणु। दनुनंदन कर्म से अनुरक्त और कर्म से विरक्त होने वाले प्राणी समूह जिस प्रकार राग और विराग के हेतुभूत विभिन्न कर्मों को प्राप्त होते हैं वह सुनो। यथावत संप्रवर्तन्ते यस्मिन् तिष्ठन्ति वा विभौ तत्ते अनुपूर्व्या व्याख्यास्ये तदेहैकमनाः शृणु। प्रभो जिस प्रकार वे कर्म में प्रवृत्त होते तथा जिस निमित्त से उसमें स्थित होते हैं और जिस अवस्था में उससे निवृत्त हो जाते हैं वह सब मैं तुमसे क्रमशः बताऊंगा, तुम उसे यहाँ एकाग्र चित्त होकर सुनो। अनादि निधनम श्रीमान हरे नारायण प्रभु देव सृजति भूतानि स्थावराणि चराणि च। श्रीमान भगवान नारायण हरि आदि और अंत से रहित हैं, वे ही चराचर प्राणियों की रचना करते हैं। स वै सर्वेषु भूतेषु क्षरश्चाक्षर एव च एकादश विकारात्मा जगत पिबति रश्मिभिः। वे ही संपूर्ण प्राणियों में क्षर और अक्षर रूप से विद्यमान हैं। ग्यारह इंद्रियों का जो वैकारिक सर्ग है वह भी उन्हीं का स्वरूप है। वे अपनी चैतन्यमयी किरणों द्वारा संपूर्ण जगत में व्याप्त हो रहे हैं। श्री विष्णु पुराण में तीन प्रकार की प्राकृत सृष्टि बताई गई है। पहली महत्तत्व की सृष्टि है जिसे यहाँ क्षर शब्द से कहा गया है। दूसरी भूत सृष्टि मानी गई है जो तन्मात्राओं की सृष्टि है। यहाँ भूतेषु पद के द्वारा उसी की ओर संकेत किया गया है। एकादश विकार आत्मा इस पद के द्वारा तीसरी सृष्टि का निर्देश किया गया है जिसे वैकारिक एवं ऐन्द्रियक सर्ग भी कहते हैं। इसमें पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और एक मन इन ग्यारह तत्वों की रचना हुई है। पादौ तस्य महिम विद्धि मूर्धानम दिवमित्युत बाह वस्तु दिशो दैत्य श्रोत्रमाकाशमेव च तस्य तेजो मयः सूर्यो मनश्चंद्रमसि स्थितम बुद्धिर्ज्ञानगता नित्यं रसस्त्वप्सु प्रतिष्ठितः। दैत्यराज, पृथ्वी को भगवान विष्णु के दोनों चरण समझो, स्वर्गलोक को मस्तक जानो, ये चारों दिशाएं उनकी चार भुजाएं हैं, आकाश कान हैं, तेजस्वी सूर्य उनका नेत्र है, मन चंद्रमा है, बुद्धि उनके नित्य ज्ञान वृत्ति है और जल रसनेन्द्रिय है। भुव्रो रणंतारस्तस्य ग्रहा दानव सत्तम नक्षत्र चक्रम नेत्राभ्याम पादयोर्भूश्च दानव। दानव प्रवर, संपूर्ण ग्रह उनकी दोनों भौहों के बीच में स्थित हैं, नक्षत्र मंडल नेत्रों से प्रकट हुआ है। दनुनंदन, यह पृथ्वी उनके दोनों चरणों में स्थित है। तम विद्धि भूतम विश्वामिदं परमं विद्धि चैश्वरं रजस्तमश्च सत्वं च विद्धि नारायणतात्मकं श्रुअश्रमाणां फलं तात कर्मणस्तत फलं विदुह। उन्हें तुम संपूर्ण भूत स्वरूप, इस जगत का आदि कारण और परमेश्वर समझो, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण इन तीनों को नारायण में ही मानो। तात, समस्त आश्रमों का फल वे ही हैं, विद्वान पुरुष समस्त कर्मों द्वारा प्राप्तव्य फल उन्हीं को मानते हैं। अकर्मणः फलम चैव स एव परम व्ययः छंदांसी यस्य रोमाणी यक्षरम च सरस्वती। कर्मों का त्याग रूप जो सन्यास है, उसका फल भी वे अविनाशी परमात्मा हैं। वेद मंत्र उनके रोम हैं तथा प्रणव उनकी वाणी है। बहवाश्रयो बहुमुखो धर्मो हृदय समाश्रितः स ब्रह्म परमो धर्मस्तपश्च सदसच्च सह। बहुत से वर्ण और आश्रम उनके आश्रय हैं, उनके अनेक मुख हैं, हृदय में आश्रित धर्म भी उन्हीं का स्वरूप है। वे ही ब्रह्म हैं, वे ही आत्मदर्शन रूप परम धर्म हैं, वे ही तप और सदसत स्वरूप हैं। श्रुति शास्त्र ग्रहोपेतः षोडशवर्तिकः क्रतुश्च सह पितामहश्च विष्णुश्च सो अश्विनौ स पुरंदरः मित्रो अथ वरुणश्चैव यमो अथ धनदस्तथा। श्रुति, वेद, शास्त्र और सोम पात्र सहित 16 ऋतुजों वाला यज्ञ भी वे ही हैं। वे ही ब्रह्मा विष्णु दोनों अश्विनी कुमार इंद्र मित्र वरुण यम और कुबेर हैं। ते पृथक दर्शनास्तस्य संविदन्ति तथैकताम् एकस्य विद्धि देवस्य सर्वं जगदिदं वशे। उनका दर्शन पृथक पृथक होने पर भी वे अपनी एकता को जानते हैं। तुम भी इस संपूर्ण जगत को एक परमात्म देव के ही अधीन समझो। नानाभूतस्य दैत्येन्द्र तस्यैकत्वं वदत्ययम् जन्तुः पश्यति विज्ञानात् ततो ब्रह्म प्रकाशते। दैत्यराज, अनेक रूपों में प्रकट हुए उन परमात्मा की एकता का यह वेद प्रतिपादन करता है। जीव विज्ञान बल से ही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, उस समय उसकी बुद्धि में वह ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है। संघार विक्षेप सहस्र कोटि स्तिष्ठन्ति जीवाः प्रचरन्ति चान्ये प्रजा विसर्गस्य च पारिमाण्यं वापि सहस्राणि बहूनि दैत्य। कितने ही जीव करोड़ों कल्पों तक स्थावर रूप से एक स्थान में स्थित रहते हैं और कितने ही उतने समय तक इधर उधर विचरते रहते हैं। दैत्य प्रवर, प्रजा की सृष्टि का परिमाण कई हजार बावणियों की संख्या के समान है। वाप्यः पुनर्योजन विस्तृतास्ताः क्रोशं च गंभीर तयावगाढ़ाः आयामतः पंचशताश्च सर्वाः प्रत्येकशो योजनतः प्रबद्धाः वाप्या जलं क्षिप्यति बालकोटया त्वन्हा सक्रच्चाप्यथ न द्वितीयं तासां क्षये विद्धि परम विसर्गं संघारमेकं च तथा प्रजानां। वे सारी बावणियाँ 500 योजन चौड़ी, 500 योजन लंबी और एक एक कोस गहरी हूँ। गहराई इतनी हो कि उनमें कोई प्रवेश न कर सके। तात्पर्य यह कि प्रत्येक बावड़ी बहुत लंबी चौड़ी और गहरी हो, उनमें से एक बावड़ी के जल को कोई दिन भर ही एक ही बार एक बाल की नोक से उलीचे, दूसरी बार न उलीचे। इस प्रकार उलीचने से उन सारी बावड़ियों का जल जितने समय में समाप्त हो सकता है, उतने ही समय में प्राणियों की सृष्टि और संहार की क्रम की समाप्ति हो सकती है। अर्थात जैसे उक्त प्रकार से उलीचने पर उन बावड़ियों का जल सूखना असंभव है, वैसे ही बिना ज्ञान के संसार का उच्छेद होना असंभव है। षड जीव वर्णाम परमं प्रमाणम कृष्णो धूम्रो नीलमत्थास्य मध्यम रक्तम पुनः सह्यतरम सुखम तु हारिद्र वर्णम सुसुखम च शुक्लम। प्राणियों के वर्ण छह प्रकार के हैं, कृष्ण धूम्र नील रक्त हरिद्रा यानी पीला और शुक्ल। इनमें कृष्ण धूम्र और नील वर्ण का सुख मध्यम होता है, रक्त वर्ण विशेष रूप से सहन करने योग्य होता है, हरिद्रा किसी कांति सुख देने वाली होती है और शुक्ल वर्ण अत्यंत सुखदायक होता है। जब तमोगुण की अधिकता, सत्वगुण की न्यूनता और रजोगुण की सम अवस्था हो तब कृष्ण वर्ण होता है। यह स्थावर सृष्टि का रंग माना गया है। तमोगुण की अधिकता, रजोगुण की न्यूनता और सत्वगुण की सम अवस्था होने पर धूम्र वर्ण होता है। यह पशु पक्षी की योनि में जन्म लेने वाले प्राणियों का वर्ण माना गया है। रजोगुण की अधिकता, सत्वगुण की न्यूनता और तमोगुण की सम अवस्था होने पर नील वर्ण होता है। यह मानव सर्ग का वर्ण बताया गया है। इसी में जब सत्वगुण की सम अवस्था और तमोगुण की न्यूनावस्था हो तो मध्यम वर्ण होता है, उसका रंग लाल होता है, इसे अनुग्रह सर्ग कहते हैं। जब सत्वगुण की अधिकता, रजोगुण की न्यूनता और तमोगुण की सम अवस्था हो तो हरिद्रा के समान पीत वर्ण होता है, यही देवताओं का वर्णन है, अतः इसे देवसर्ग कहते हैं। उसी में जब रजोगुण की सम अवस्था और तमोगुण की न्यूनता हो तो शुक्ल वर्ण होता है, इसी को कौमार सर्ग कहा गया है। परम तु शुक्लम विमलम विशोकम गत्क्लममम सिद्धयति दानवेन्द्र गत्वा तो योनि प्रभवाणि दैत्य सहस्रशः सिद्धि मुपैति जीवः। दानवराज, शुक्ल वर्ण निर्मल शोकहीन परिश्रम शून्य होने के कारण सिद्धि कारक होता है। दिति कुल नंदन, जीव सहस्रों योनियों में जन्म ग्रहण करने के बाद मनुष्य योनि में आकर कभी सिद्धि लाभ करता है। गतिम च याम दर्शन महादेवो गत्वा शुभम दर्शनमेव चापी गतिः पुनर्वर्ण कृता प्रजानाम वर्णस्तथा कालकृतो असुरेंद्र। असुरेंद्र, देवराज इंद्र ने मंगलमय तत्व ज्ञान प्राप्त करके हमारे निकट जिस गति और दर्शन शास्त्र का वर्णन किया है वह प्राणियों की वर्ण जनित गति है। अर्थात शुक्ल वर्ण वालों को वही सिद्धि प्राप्त होती है, वह वर्ण कालकृत माना गया है। शतम सहस्राणि चतुर्दशेह परागतिर जीव गणस्य दैत्य आरोहणम तत्कृतमेव विद्धि स्थानम तथा निस्सरणम च तेषाम। दैत्य प्रवर, इस जगत में समस्त जीव समुदाय की परागति 14,00,000 बताई गई है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 करण हैं। इन्हीं के भेद से 14 प्रकार की गति होती है। फिर विषय भेद से वृत्ति भेद होने के कारण 14,00,000 प्रकार की गति होती है। जीव का जो ऊर्ध्व लोकों में गमन होता है वह भी उन्हीं 14 करणों द्वारा संपादित होता है। विभिन्न स्थानों में जो स्थिरता पूर्वक निवास है वह और उन स्थानों से जो उन जीवों का अधःपतन होता है वह भी उन्हीं के संबंध से होता है। इस बात को तुम अच्छी तरह से जान लो। अतः इन 14 करणों को सात्विक मार्गाभिमुखी बनाना चाहिए। कृष्णस्य वर्णस्य गतिर्निकृष्टा ससज्जते नरके पंचमानः स्थानं तथा दुर्गतिभिस्तु तस्य प्रजा विसर्गान सुबहून वदन्ति। कृष्ण वर्किंग की गति नीच बताई गई है। वह नरक प्रदान करने वाले निषिद्ध कर्मों में आसक्त होता है, इसीलिए नरक की आग में पकाया जाता है। वह कुमार्ग में प्रवृत्त हुए पूर्वोक्त 14 करणों द्वारा पापाचार करने के कारण अनेक कल्पों तक नरक में ही निवास करता है, ऐसा ऋषि मुनि कहते हैं। शतम सहस्राणी तत्तश्चरित्वा प्राप्नोति वर्णम हरितम तु पश्चात सचैव तस्मिन् निवसत्यनीशो युगक्षये तपसा संवृतात्मा। तदनंतर वह जीव लाखों बार या लाखों वर्षों तक नरक में विचरण करके फिर धूम्र वर्ण पाता है, यानी पशु पक्षी आदि की योनि में जन्म लेता है। उस योनि में भी वह विवश होकर बड़े दुख से निवास करता है। फिर युग क्षय होने पर वह तप, पुरातन पुण्य कर्म या विवेक के प्रभाव से सुरक्षित होकर उस संकट से उद्धार पा जाता है। स वै यदा सत्वगुणेन युक्तस्तमो व्यपोहन घटते स्वबुद्धया स लोहितम वर्णमुपैति नीलान मनुष्यलोके परिवर्तते च। वही जीव जब सत्वगुण से युक्त होता है तब अपनी बुद्धि के द्वारा तमोगुण की प्रवृत्ति को दूर हटाता हुआ अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करता है। उस समय सत्वगुण के बढ़ जाने पर वह रक्तवर्ण को प्राप्त होता है। इसी को अनुग्रह सर्ग कहा गया है। चित्त की विभिन्न वृत्तियों पर अनुग्रह करने वाले देव विशेष का ही नाम अनुग्रह है। जब सत्व गुण में कुछ कमी रह जाती है तब वह जीव नील वर्ण को प्राप्त होकर मनुष्य लोक में आवागमन करने लगता है। स तत्र संहार विसर्गमेकं स्वधर्म जैर बंधनैः क्लिश्यमानः ततः स हरिद्रमुपैति वर्णम संगार विक्षेपशते व्यतीते। तत्पश्चात वह मनुष्य लोक में एक कल्प तक स्वधर्म जनित बंधनों से बंधकर क्लेश उठाता हुआ जब धीरे धीरे अपनी तपस्या को बढ़ाता है तब हल्दी किसी कांति वाले पीत वर्ण देवता भाव को प्राप्त होता है। वहाँ भी सैकड़ों कल्प व्यतीत कर लेने पर वह पुनः पुण्य क्षय के पश्चात मनुष्य होता है। इस प्रकार वह देवता से मनुष्य और मनुष्य से देवता होता रहता है। हरिद्र वर्णस्तु प्रजा विसर्गात सहस्र शस्तिष्ठति संचरण वै अविप्रमुक्तो निरये च दैत्य ततः सहस्राणि दशापराणि गतिः सहस्राणि च पंच तस्य चत्वारि संवर्तन कृतानि चैव विमुक्तमेनं निरयाच्य विद्धि सर्वेषु चान्येषु च संभवेषु। हे दितिपुत्र, सहस्रों कल्पों तक देव रूप से विचरते रहने पर भी जीव विषय भोग से मुक्त नहीं होता तथा प्रत्येक कल्प में किए हुए अशुभ कर्मों के फलों को नरक में भोगता हुआ जीव 19,000 विभिन्न गतियों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात उसे नरक से छुटकारा मिलता है। मनुष्य के सिवा अन्य सभी योनियों में केवल सुख दुख के भोग प्राप्त होते हैं, मोक्ष का सुयोग हाथ नहीं लगता है। इस बात को तुम्हें भली भांति समझ लेना चाहिए। सदेव लोके व्यरहत्य भीक्षण ततश्च्युतो मानुषा मानुषतामुपैति संघार विक्षेप शतानि चाष्टौ मर्त्येषु तिष्ठत्य मृतत्वमेति। वह जीव निरंतर देवलोक में विहार करता है और वहां से भ्रष्ट होने पर मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। मर्त्यलोक में वह 800 कल्पों तक बारंबार जन्म लेता रहता है। तत्पश्चात शुभ कर्म करके वह पुनः देव भाव को प्राप्त करता है। यह आवागमन का चक्र तभी तक चलता है जब तक जीव को परम ज्ञान या अनन्य भक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती। उसकी प्राप्ति होने पर वह तो या तो मुक्त या परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सो अस्मादथ भ्रश्यति काल योगात कृष्णे तले तिष्ठति सर्वकृष्टे तथा त्वयं सिद्धयति जीव लोकस्तत ते अभिधास्याम्य सुर प्रवीर। असुरों के प्रमुख वीर वह जीव कालक्रम से अशुभ कर्म करके कभी कभी मर्त्यलोक से भी नीचे गिर जाता है और सबसे निकृष्ट तल प्रदेश की भांति निम्नतम कृष्णवर्ण यानी स्थावर योनि में जन्म ग्रहण करके स्थित होता है। इस प्रकार उत्थान पतन के चक्र में पड़े हुए इस जीव समूह को जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त होती है वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। दैवानि स व्यूहशतानि सप्त रक्तो हरिद्रो अथ तथैव शुक्लः संशित्य संधावती शुक्लमेत मष्टावरान् वरांच्य तमान स लोकान् क्रमशः रक्तवर्ण हरिद्रावर्ण तथा शुक्लवर्ण होकर वह जीव बारी बारी से 700 दिव्य शरीरों का आश्रय ले भू आदि 7 उत्तम उत्तम लोकों में विचरण करके पूर्व पुण्य के प्रभाव से वेग पूर्वक विशुद्ध ब्रह्मलोक में चला जाता है। अष्टौ च षष्टिम न शतानि चैव मनोनिरुद्धानि महाद्युतीनां शुक्लस्य वर्णस्य परागतेर्या तिरिण्येवरुद्धानि महानुभाव महानुभाव वृत्रासुर प्रकृति महत्त्व अहंकार और पंच तन्मात्राएं ये 8 और दूसरे 60 तत्व और इनकी जो सैकड़ों वृत्तियां हैं ये सब महातेजस्वी योगियों के मन के द्वारा अवरुद्ध की हुई होती हैं तथा सत्व रज और तम इन तीनों गुणों को भी वे अवरुद्ध कर देते हैं। अतः शुक्ल वर्ण वाले सनकादिकों के समान सिद्ध पुरुष को जो उत्तम गति प्राप्त होती है वही उन योगियों को मिलती है। संघार विक्षेपम निष्टमेकम चत्वारि चान्यानि वत्सत्यनीशः षष्ठस्य वर्णस्य परागतिर्या सिद्धावसिद्धस्य गत क्लमस्य जो परम गति शुक्ल वर्ण के साधक को मिलती है उसे पाने का अधिकार भ्रष्ट करके भी जो असिद्ध हो रहा है एवं जिसके समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं ऐसे योगी भी यदि योग जनित ऐश्वर्य के सुख भोग की वासना का त्याग करने में असमर्थ हैं तो वह न चाहने पर भी एक कल्प तक अपनी साधना के फल रूप मह जन तप और सत्य इन चारों लोकों में क्रमशः निवास करता है और कल्प के अंत में मुक्त हो जाता है। सप्तोत्तरम तत्र वसत्यनीशः संघार विक्षेप शतम सशेषम तस्मादुपावृत्य मनुष्य लोके ततो महान मानुष ताम पैति किंतु जो भली भांति योग साधन में असमर्थ है वह योग भ्रष्ट पुरुष 100 कल्पों तक ऊपर के 7 लोकों में निवास करता है फिर बचे हुए कर्म संस्कारों के सहित वहां से लौटकर मनुष्य लोक में पहले से बढ़कर महत्व संपन्न हो मनुष्य शरीर को पाता है। तस्मादुपावृत्य ततः क्रमेण सो अग्रेणेर संतिष्ठति भूतसर्गम स सप्त कृत्वश्च परैति लोकान संगार विक्षेप कृत प्रभाव तदनंतर मनुष्य योनि से निकलकर वह उत्तरोत्तर श्रेष्ठ देवादि योनियों की ओर अग्रसर होता है एवं 7 लोकों में प्रभावशाली होकर 1 कल्प तक निवास करता है। सप्तैव संघार मुप्पप्लवानी संभाव्य संतिष्ठति जीवलोके ततो अव्ययम् स्थानम् अनंतमेति देवस्य विष्णुव्रत ब्रह्मणश्च शेषस्य चैवात नरस्य चैव देवस्य विष्णुः परमस्य चैव फिर वह योगी भू आदि 7 लोकों को विनाशशील क्षण भंगुर समझकर पुनः मनुष्य लोक में भली भांति शोक मोह से रहित होकर निवास करता है। तदनंतर शरीर का अंत होने पर वह अव्यय एवं अनंत परिच्छेद से शून्य स्थान पर ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। वह अव्यय एवं अनंत स्थान किसी के मत में महादेव जी का कैलाश धाम है, किसी के मत में भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम है, किसी के मत में ब्रह्मा जी का सत्यलोक है, कोई कोई उसे भगवान शेष या अनंत का धाम बताते हैं, कोई वह जीव का ही परम धाम है ऐसा कहते हैं और कोई कोई उसे सर्वव्यापी चिन्मय प्रकाश से युक्त पर ब्रह्म का स्वरूप बताते हैं। संघार काले परिदग्ध काया ब्रह्मणा मायांति सदा प्रजा ही चेष्टात्मनो देव गणाष्ट सर्वे ये ब्रह्मलोके अपराह स्मते अपि ज्ञानाग्नि के द्वारा जिनके सूक्ष्म स्थूल और कारण शरीर दग्ध हो गए हैं वे प्रजाजन अर्थात योगी लोग प्रलय काल में सदा पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं एवं जो ब्रह्मलोक से नीचे के लोकों में रहने वाले साधनशील देवी प्रकृति से संपन्न साधक हैं वे सब पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। प्रजा विसर्गम तु शशेष काले स्थानानि स्वान्येव सरन्ति जीवाः निःशेषतस्तत्पदं यान्ति चान्ते सर्वे देवा ये सदृशा मनुष्याः। प्रलय काल में जो जीव देव भाव को प्राप्त थे वे यदि अपने संपूर्ण कर्म फलों का उपभोग समाप्त करने से पहले ही लय को प्राप्त हो जाते हैं तो कल्पांतर में पुनः प्रजा की सृष्टि होने पर वे शेष फल का उपभोग करने के लिए उन्हीं स्थानों को प्राप्त होते हैं जो उन्हें पूर्व कल्प में प्राप्त थे, किंतु जो कल्पांत में उस योनि संबंधी कर्म फल भोग को पूर्ण कर चुके हैं वे स्वर्ग लोक का नाश हो जाने पर दूसरे कल्प में उनके जैसे कर्म हैं उसी के सदृश अन्य प्राणियों की भांति मनुष्य योनि को ही प्राप्त होते हैं। ये तो च्युता सिद्ध लोकात क्रमेण तेषां गतिम यान्ति तथानुपूर्व्या जीवाः परे तद बलतुल्य रूपाः स्वं स्वं विधिं यान्ति विपर्ययेण। जो योगी सिद्ध लोक से गिरकर मृत्यु लोक में आए हैं उनके समान साधन बल से संपन्न जो अन्य योगी हैं वे भी एक लोक से दूसरे लोक में ऊपर उठते हुए क्रमशः उन सिद्ध पुरुषों की ही गति को प्राप्त होते हैं, परंतु जो वैसे नहीं हैं वे विपरीत भाव के कारण अपनी अपनी गति को प्राप्त होते हैं। स याव देवास्ति सशेब शभुकते प्रजाश देव्यौ च तथैव शुक्ले तावत तदंगेषु विशुद्ध भावः संयम्य पंचेन्द्रिय रूपमेतत्। विशुद्ध भाव से संपन्न सिद्ध पुरुष जब तक पंचेन्द्रिय रूप इस कर्ण समुदाय का संयम करके शेष प्रारब्ध कर्म का उपभोग करता है तब तक उसके शरीर में समस्त प्रजागणों का अर्थात इंद्रियों के देवताओं का तथा अपरा और परा विद्या का निवास रहता है। शुद्धाम गतिम ताम परमाम परायति शुद्धेन नित्यम मनसा विचिन्वन ततो अव्ययम स्थानमुपैति ब्रह्म दुष्प्राप्मभ्येति स शाश्वतम वही। जो साधक सदा शुद्ध मन से उस विशुद्ध परम गति का अनुसंधान करता है वह उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है। तदनंतर अविकारी दुर्लभ एवं सनातन ब्रह्म पद को प्राप्त करके वह उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। इत्येत दाख्यात महीन सत्व नारायणस्य बलम मयाते उत्कृष्ट बलशाली दैत्यराज, इस प्रकार यहाँ मैंने तुमसे यह भगवान नारायण का बल एवं प्रभाव बताया है। वृत्र उवाच एवं गते मेन विषादो अस्ति कश्चित सम्यक च पश्यामि वचस्तथै तत् श्रुत्वा तु ते वाच मदीन सत्व विकल्मशो अस्मद्यद्य तथा विपाम्मा। वृत्रासुर बोला उदारचित्त महात्मा सन्नत कुमार जी यदि ऐसी बात है तो मुझे कोई विषाद नहीं है, मैं आपके वचन को अच्छी तरह समझता और इसे यथार्थ मानता हूँ। आज मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि आपकी इस वाणी को सुनकर मेरे सारे पाप और कलुष दूर हो गए। प्रवृत्त मेतद भगवन महर्षे महाद्युतेश चक्र मनंत वीर्यम विष्णोरनंतस्य सनातनम तत्स्थानम सर्गा यत्र सर्वे प्रवृत्ता स वै महात्मा पुरुषोत्तमो वै तस्मिन् जगत सर्वमिदं प्रतिष्ठितम्। भगवन महर्षे महातेजस्वी अनंत एवं सर्वव्यापी भगवान विष्णु का यह अमित शक्तिशाली संसार चक्र चल रहा है। यह भगवान विष्णु का वह सनातन स्थान है जहाँ से सारी सृष्टियों का आरंभ होता है। महात्मा विष्णु पुरुषोत्तम हैं, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। भीष्म उवाच एवं उक्त्वा स कौन्तेय वृत्तः प्राणान वा सृजत योजयित्वा तथात्मानं परम स्थानं वाप्तवान। भीष्म जी कहते हैं कुंती नंदन ऐसा कहकर वृत्रासुर ने अपने आत्मा को परमात्मा में लगाकर उन्हीं का ध्यान करते हुए प्राण त्याग दिए और परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त कर लिया। युधिष्ठिर उवाच अयम स भगवान देवः पितामह जनार्दनः सन्नत कुमार वृत्ता यत्त दाख्यातवान पुरा। युधिष्ठिर ने पूछा पितामह पूर्व काल में महात्मा सन्नत कुमार ने वृत्रासुर से जिनके स्वरूप का वर्णन किया था वे भगवान विष्णु ये हमारे जनार्दन श्री कृष्ण ही तो हैं। भीष्म उवाच मूलस्थायी महादेवो भगवान स्वेन तेजसा ततस्थः सृजति तान भावान नाना रूपान महामनाः। भीष्म जी ने कहा युधिष्ठिर मूल कारण रूप से स्थित महान देव महामनस्वी भगवान नारायण हैं। वे अपने उस चिन्मय स्वरूप में स्थित होकर अपने प्रभाव से नाना प्रकार के संपूर्ण पदार्थों की सृष्टि करते हैं। तुरीयांशेन तस्येमं विद्धि केशवम अच्युतम तुरीयार्धेन लोकांस्त्रीन भाव यत्येव बुद्धिमान। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले इन भगवान श्री कृष्ण को तुम उन श्री नारायण के एक चतुर अंश से संपन्न समझो। बुद्धिमान श्री कृष्ण अपने उस चतुर अंश से ही तीनों लोकों की रचना करते हैं। अर्वाक स्थितत्सु यह स्थायी कलपांते परिवर्तते स शेते भगवान अप्सु यो असावती बलह प्रभुह तान विधाता प्रसन्नात्मा लोकांश चरति शाश्वतान। जो परवर्ती सनातन नारायण प्रलय काल में भी विद्यमान हैं वे ही अत्यंत बलशाली और सबके अधीश्वर भगवान श्री हरि कल्पांत में जल के भीतर शयन करते हैं तथा वे प्रसन्नात्मा सृष्टिकर्ता ईश्वर उन समस्त शाश्वत लोकों में विचरण करते हैं। सर्वान्य शून्यानि करोत्यनंतः सनातनः संचरते च लोकान् स चानिद्रिद्वः सृजते महात्मा ततस्तम जगत सर्वमिदं विचित्रम्। अनंत एवं सनातन भगवान श्री हरि समस्त कारणों को सत्ता और स्फूर्ति देकर परिपूर्ण करते और लीला वपु धारण करके लोकों में विचरण करते हैं। उन महापुरुष की गति को कोई रोक नहीं सकता। वे ही इस जगत की सृष्टि करते हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण विचित्र विश्व प्रतिष्ठित है। युधिष्ठिर उवाच वृत्रेण परमार्थज्ञ दृष्टा मन्ये आत्मनो गतिः शुभ तस्मात् च सुखितो न शोचति पितामह। युधिष्ठिर ने कहा परमार्थ तत्व के ज्ञाता पितामह मैं समझता हूँ कि वृत्तासुर ने आत्मा के शुभ एवं यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया था इसीलिए वह सुखी था शोक नहीं करता था। शुक्ल शुक्लाभिजातीय साध्यो नावर्तते अनघ तिर्यक गतेश्च निर्मुक्तो निर्याच्य पितामह। निष्पाप पितामह वह शुद्ध कुल में उत्पन्न हुआ था और स्वभाव से भी शुद्ध था। जान पड़ता है वह साध्य नामक देवता ही था इसीलिए पुनः संसार में नहीं लौटा। वह पशु पक्षियों की योनि तथा नरक से छुटकारा पा गया। हरिद्र वर्णे रक्ते वा वर्तमानस्तु पार्थिव तिर्यगे वानुपश्येत कर्म भिस्ताम सही व्रतः। पृथ्वीनाथ पीत वर्ण वाले देव सर्ग में तथा रक्त वर्ण वाले अनुग्रह सर्ग में विद्यमान प्राणी कभी तामस कर्मों से आवृत होकर तिर्यग योनि का भी दर्शन कर सकता है। वयम तु भ्रशमापन्ना रक्ता दुख सुखे असुखे काम गतिम प्रतिपत्स्यामो नीलाम कृष्णा धमा मथ। हम लोग तो और भी अधिक आपत्ति से घिरे हुए हैं दुख सुख से मिश्रित भाव में अथवा केवल दुखमय भाव में आसक्त हैं। ऐसी दशा में पता नहीं हमें किस गति की प्राप्ति होगी। हम नील वर्ण वाली मानव योनि में पड़ेंगे या कृष्ण वर्ण वाली स्थावर योनि से भी हीन दशा को जा पहुँचेंगे। भीष्म उवाच शुद्धा भी जन संपन्ना पांडवा संशित व्रता विहृत्य देवलोकेशु पुडर मानुष मेष्यथ। भीष्म जी ने कहा युधिष्ठिर तुम सभी पांडव विशुद्ध कुल से संपन्न एवं तीक्ष्ण व्रतों का भली भांति पालन करने वाले हो अतः देवताओं के लोकों में विहार करके पुनः मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करोगे। प्रजा विसर्गम च सुखेन काले प्रत्येत्य देवेशु सुखानि भुक्त्वा सुखेन संयास्यथ सिद्ध संख्याम मा वो भयम भूत विमलास्थ सर्वे। तुम सब लोग यथा समय सुख से संतानोत्पादन करके देवलोकों में जाकर सुख भोगोगे तत्पश्चात सुखपूर्वक सिद्धि प्राप्त करके सिद्धों में गिने जाओगे। तुम्हारे मन में दुर्गति का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम सब लोग निर्मल एवं निष्पाप हो। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्ष धर्म पर्वणि वृत्रगीतासु द्वितीयो अध्याय। वृत्रगीता संपूर्णा। जय श्री राम।